नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ए प्रैक्टिकल गाइड टू सिसमिल द सिस्टम्स मॉडलिंग लैंग्वेज सैनफोर्ड फ्रीडेंथल एलन मूर और रिक स्टाइनर की तकनीकी संदर्भ पुस्तक है। इसका विषय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की सिसमिल भाषा और मॉडल आधारित सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। तीसरा संस्करण सिसमिल संस्करण 1.4 के अनुरूप अद्यतन किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य केवल आरेख बनाना सिखाना नहीं, बल्कि जटिल प्रणालियों को आवश्यकताओं, संरचना, व्यवहार, इंटरफेस और विश्लेषण के परस्पर जुड़े मॉडल के रूप में समझना है। लेखक सिसमिल को यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से विकसित किंतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोगों, प्रक्रियाओं और सुविधाओं वाली प्रणालियों के लिए विस्तृत भाषा के रूप में रखते हैं। सामग्री 4 भागों में आगे बढ़ती है। पहले मॉडल आधारित दृष्टिकोण और आरंभिक प्रयोग, फिर भाषा का विस्तृत विवरण, उसके बाद इंजीनियरिंग विधियों में अनुप्रयोग और अंत में संगठन में MBSE अपनाने के प्रश्न। इसलिए यह पुस्तक आरंभिक सीखने, औपचारिक संदर्भ और व्यावहारिक परिनियोजन तीनों भूमिकाएं निभाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले दस्तावेज केंद्रित कार्य से एकीकृत मॉडल आधारित सिस्टम्स इंजीनियरिंग की ओर बदलाव। पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि जटिल प्रणाली का ज्ञान अलग अलग दस्तावेजों में बिखरा रहने पर असंगति और परिवर्तन नियंत्रण की समस्या बढ़ती है। आवश्यकताओं की सूची, वास्तु विवरण, व्यवहार वर्णन, परीक्षण सामग्री और विश्लेषण रिपोर्ट यदि स्वतंत्र रूप से बदले तो यह जानना कठिन हो जाता है कि एक निर्णय का बाकी प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। मॉडल आधारित सिस्टम्स इंजीनियरिंग इस समस्या को एक साझा संरचित मॉडल द्वारा संबोधित करती है। सिसमिल उस मॉडल में आवश्यकताओं, कार्यों, घटकों, प्रवाहों और मापनीय गुणों के संबंधों को व्यक्त करने की भाषा देता है। इसका महत्व चित्रों की सुंदरता में नहीं बल्कि ट्रेसबिलिटी में है। उदाहरण के लिए, किसी आवश्यकता को उससे जुड़े संरचनात्मक तत्व, व्यवहार और सत्यापन गतिविधि से जोड़ा जा सकता है। परिवर्तन होने पर इंजीनियर केवल संबंधित पार्ट नहीं ढूंढता बल्कि प्रभावित संबंधों की जांच करता है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि मॉडल दस्तावेजों का यांत्रिक विकल्प नहीं है। मॉडल से उपयोगी दृश्य, रिपोर्ट और संचार सामग्री निकाली जा सकती है, लेकिन मूल इंजीनियरिंग संपत्ति संबंधों सहित मॉडल रहती है। इस दृष्टि के लिए स्पष्ट मॉडलिंग उद्देश्य, नामकरण, स्तरों की सीमा और जिम्मेदारियों का अनुशासन आवश्यक है। बिना इन बातों के सिसमिल आरेखों का संग्रह बन सकता है, एकीकृत इंजीनियरिंग मॉडल नहीं। दूसरा, 9 आरेखों के माध्यम से आवश्यकता, संरचना, व्यवहार और संगठन का अलग लेकिन जुड़ा निरूपण। पुस्तक सिसमिल के 9 आरेखों को अलग अलग चित्रकारी तकनीक नहीं बल्कि मॉडल के पूरक दृश्यों के रूप में समझने का आधार देती है। पैकेज आरेख मॉडल को संगठित करता है। ब्लॉक डेफिनेशन आरेख प्रणाली, उपप्रणाली, प्रकार, गुण और संबंधों की परिभाषा करता है। इंटरनल ब्लॉक आरेख किसी ब्लॉक के भीतर भागों, पोर्टों, कनेक्टरों और वस्तु या ऊर्जा जैसे प्रवाहों का विन्यास दिखाता है। इन दोनों संरचनात्मक दृश्यों का अंतर महत्वपूर्ण है। पहला वर्गीकरण और परिभाषा पर केंद्रित है जबकि दूसरा आंतरिक संयोजन और इंटरफेस पर। व्यवहार के लिए गतिविधि आरेख कार्य प्रवाह और नियंत्रण दिखाता है। अनुक्रम आरेख संदेशों के समयबद्ध आदान प्रदान को और स्टेट मशीन आरेख अवस्थाओं तथा घटनाओं से होने वाले संक्रमण को व्यक्त करता है। यूज केस आरेख बाहरी उपयोगकर्ता या अन्य प्रणाली के दृष्टिकोण से अपेक्षित सेवाओं को सीमित करता है। रिक्वायरमेंट आरेख आवश्यकता, व्युत्पत्ति, परिष्करण, संतुष्टि और सत्यापन के संबंधों के लिए विशेष सिसमिल क्षमता है। पैरामेट्रिक आरेख बाधा समीकरणों के माध्यम से प्रदर्शन विश्लेषण को मॉडल से जोड़ता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि हर प्रश्न के लिए हर आरेख नहीं बनाना चाहिए। सही दृश्य का चयन इस आधार पर होना चाहिए कि हितधारक को किस निर्णय, इंटरफेस, जोखिम या सत्यापन संबंध को समझना है। तीसरा, रिक्वायरमेंट आवंटन और सत्यापन से डिजाइन निर्णयों की ट्रेसबिलिटी स्थापित करना। सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एक मॉडल तभी उपयोगी होता है जब वह यह स्पष्ट कर सके कि प्रणाली में कोई तत्व क्यों है और वह अपेक्षा पूरी होने का प्रमाण कैसे देगा। पुस्तक में रिक्वायरमेंट मॉडलिंग को इसी कारण केंद्रीय स्थान मिलता है। सिसमिल में आवश्यकता को केवल साधारण पार्ट नहीं माना जाता, उसे एक मॉडल तत्व की तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके गुण रखे जा सकते हैं और अन्य तत्वों से संबंध बनाए जा सकते हैं। परिष्करण संबंध आवश्यकता को अधिक ठोस व्यवहार, संरचना या विश्लेषण से स्पष्ट करता है। संतुष्टि संबंध बताता है कि कौन सा डिजाइन तत्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। सत्यापन संबंध उस परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण या प्रदर्शन गतिविधि से जुड़ता है जिसके आधार पर अनुपालन जांचा जाएगा। यह श्रृंखला अधूरी हो तो टीम के पास आवश्यकता तो हो सकती है, पर उसके क्रियान्वयन और प्रमाण का भरोसेमंद नक्शा नहीं होता। आवंटन भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कार्यों को संरचनात्मक भागों या जिम्मेदारियों को उपयुक्त तत्वों पर आवंटित करके कार्यात्मक सोच और भौतिक वास्तुकला के बीच पुल बनाया जाता है। पुस्तक किसी एक विकास प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं ठहराती, इसके बजाय यह दिखाती है कि भाषा के संबंधों का उपयोग विभिन्न मॉडल आधारित विधियों में किया जा सकता है। व्यावहारिक चुनौती अत्यधिक सूक्ष्म संबंध बनाने की नहीं, बल्कि ऐसे संबंध बनाने की है जो परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण और समीक्षा में सचमुच निर्णय योग्य जानकारी दें। चौथा ब्लॉक, इंटरफेस और पैरामेट्रिक विश्लेषण से प्रणाली की वास्तुकला को परीक्षण योग्य बनाना। पुस्तक सिसेमेल की उस क्षमता पर विशेष बल देती है जो वास्तुकला को केवल घटकों की सूची से आगे ले जाती है। ब्लॉक किसी भौतिक, तार्किक या अमूर्त प्रणाली तत्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसके भाग, गुण, संचालन और संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, किंतु वास्तविक इंजीनियरिंग मूल्य तब आता है जब भागों के बीच इंटरफेस और आदान प्रदान स्पष्ट हों। इंटरनल ब्लॉक आरेख पोर्टों और कनेक्टरों के जरिए बताता है कि कौन से भाग जुड़े हैं और उनके बीच क्या प्रवाहित होता है। इससे इंटरफेस को बाद में जोड़ा गया विवरण मानने के बजाय वास्तुकला का प्रत्यक्ष भाग बनाया जा सकता है। जटिल प्रणालियों में अनेक विफलताएं घटकों के भीतर में ही बल्कि उनके बीच अपेक्षाओं के असंगत होने से आती हैं। इसलिए यह दृश्य जिम्मेदारी, सीमा और निर्भरता पर उपयोगी चर्चा कराता है। पैरामेट्रिक आरेख एक दूसरी विश्लेषणात्मक परत जोड़ता है। इसमें मूल्य गुणों को बाधा संबंधों और समीकरणों से जोड़ा जाता है ताकि द्रव्यमान, शक्ति, लागत, क्षमता या प्रदर्शन जैसी मात्राओं का आकलन मॉडल की संरचना से संबंधित रहे। यह किसी विशिष्ट विश्लेषण उपकरण का स्थान नहीं लेता, बल्कि यह बताता है कि इंजीनियरिंग गणना किन प्रणाली गुणों और निर्णयों से जुड़ी है। पुस्तक इस प्रकार गुणात्मक वास्तुकला और मात्रात्मक तर्क के बीच संबंध स्थापित करती है जो मॉडल को समीक्षा योग्य और सत्यापन उन्मुख बनाता है। अंत में MBSE को संगठन में अपनाने के लिए उपकरण, एकीकरण और कार्यप्रणाली का संतुलन। पुस्तक की विशिष्टता यह है कि वह सिसेमेल भाषा विवरण पर समाप्त नहीं होती। अंतिम भाग में यह विचार आता है कि किसी संगठन या परियोजना में MBSE का संक्रमण कैसे देखा जाए। केवल मॉडलिंग टूल खरीद लेना या कर्मचारियों को आरेख चिन्हों का प्रशिक्षण दे देना पर्याप्त नहीं है। मॉडल का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उसका स्थान, समीक्षा की विधि, विन्यास नियंत्रण और अन्य इंजीनियरिंग स्रोतों के साथ उसका संबंध तय होना चाहिए। व्यवहार में सिस्टम मॉडल को आवश्यकता प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण, सिमुलेशन, यांत्रिक डिजाइन या परियोजना डेटा से जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। पुस्तक ऐसे एकीकरण के लिए डेटा के प्रकारों और विनिमय तंत्रों पर विचार करने की आवश्यकता बताती है। टूल चयन भी केवल आरेख बनाने की सुविधा से तय नहीं होना चाहिए। मॉडल भंडार, सहयोग, संबंध प्रबंधन, रिपोर्टिंग, विश्लेषण समर्थन और मौजूदा वातावरण से संगतता जैसे प्रश्न अधिक निर्णायक हो सकते हैं। अपनाने में क्रमिक रणनीति उपयोगी रहती है जहां सीमित लेकिन वास्तविक समस्या पर मॉडल का मूल्य प्रदर्शित किया जाए। फिर संगठन अपनी मॉडलिंग परंपराएं, पुस्तकालय और शासन विकसित करे। यह भाग भाषा के शुद्ध ज्ञान और कार्यस्थल में स्थायी उपयोग के बीच अंतर को रेखांकित करता है। साथ ही यह चेतावनी भी निहित है कि प्रक्रिया की जरूरत समझे बिना अत्यधिक औपचारिकता मॉडल को बोझिल बना सकती है। निष्कर्ष में यह पुस्तक सिस्टम्स इंजीनियरों, MBSE अभ्यासकर्ताओं, तकनीकी वास्तुकारों, मॉडलिंग टूल अपनाने वाली टीमों और सिसेमेल आधारित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से परिचित सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह परिचित मॉडलिंग विचारों को व्यापक प्रणाली संदर्भ में रखती है। पाठक को केवल 9 आरेखों के संकेत और परिभाषाएं नहीं मिलती, बल्कि यह समझ भी मिलती है कि आवश्यकताओं, संरचना, व्यवहार, इंटरफेस और विश्लेषण को एक ही मॉडल में क्यों और कैसे जोड़ा जाए। विशेष व्यावहारिक लाभ ट्रेसबिलिटी, परिवर्तन के प्रभाव की समीक्षा और बहुविषय टीमों के बीच साझा भाषा बनाने में है। तीसरे संस्करण का सिसेमेल 1.4 के अनुरूप होना इसे उस संस्करण के अध्ययन के लिए प्रासंगिक संदर्भ बनाता है। संक्षिप्त परिचयात्मक पुस्तकों की तुलना में इसका दायरा अधिक व्यापक है। यह आरंभिक उपयोगी विशेषताओं से प्रवेश कराता है, फिर भाषा का विस्तृत संदर्भ देता है, मॉडल आधारित विधियों में उपयोग दिखाता है और अंततः संगठनात्मक अपनाने तक जाता है। यही क्रम इसे केवल परीक्षा तैयारी या आरेख पुस्तिका से अलग करता है। फिर भी इसकी व्यापकता के कारण बिल्कुल नए पाठक को इसे किसी मॉडलिंग टूल के अभ्यास और छोटे उदाहरणों के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसे पाठक के लिए यह धीरे धीरे परामर्श योग्य संदर्भ बन सकती है। अनुभवी पेशेवरों के लिए इसका मूल्य भाषा के औपचारिक आधार और परिनियोजन संबंधी चर्चा को एक ही स्रोत में उपलब्ध कराने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सैनफोर्ड फ्रीडेंथल PhD, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।